फंक्शन दिल्ली ग्रुप। पहले तो दिल्ली वालों को डेट फिक्स करनी है, क्योंकि दिल्ली को परिस्थान बनाना है ना। राजगद्दी तो दिल्ली में होगी है ना, तो पहले दिल्ली वालों को तैयार करनी पड़ेगी, तब तो राज्य करेंगे ना। तो दिल्ली वाले क्या तैयारी करेंगे? दिल्ली वालों को एक्स्ट्रा सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरनी को भी तैयार करनी है। तो विशेष अपने वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। तो दिल्ली वालों को डबल सेवा का ज्यादा अटेंशन रखना है, वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहे। सभी पावरफुल वृत्ति वाले हो ना, ढीले पुरुषार्थ नहीं करना, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो राज्य भी देरी से स्थापन होगा। इसलिए दिल्ली वालों को सदा ही डबल सेवा द्वारा तीव्र गति से तैयारी करनी है, राजधानी बनानी है। बनाएंगे तो नजदीक भी रहेंगे ना, तो डबल सेवा द्वारा ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाओ जो प्रकृति भी दासी बन जाए, हलचल करने के बजाय दासी बनकर सेवा करे। तो दिल्ली निवासी विश्व परिवर्तक तो हो ही, लेकिन विश्व में भी राजधानी परिवर्तन के विशेष निमित्त हो। नशा है ना, तो डबल सेवा करनी है, तभी डबल ताज मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सेवाधारी सो ताजधारी। अच्छा, बाबा दिल्ली ग्रुप से मिल रहे हैं। पहले तो क्या करना है, दिल्ली वालों को डेट फिक्स करनी है, क्योंकि दिल्ली को परिस्थान बनाना है। राजगद्दी तो दिल्ली में होगी ना, तो पहले दिल्ली वालों को तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो राज्य करेंगे ना। तो दिल्ली वाले क्या तैयारी करेंगे? दिल्ली वालों को एक्स्ट्रा सेवा करनी है। दो सेवाएं बताई बाबा ने, पहली है आत्माओं को क्या करना,
योग्य बनाना,
योग्य और योगी, दूसरा धरनी को भी
तैयार करना।
तो आत्माओं को योग्य बनाना है और आत्माओं को योगी बनाना है। कैसे बनाएंगे, कौन बना सकता है दूसरों को योगी? कौन बना सकता है? जो खुद योगी है वही दूसरों को योगी बना सकता है, जो खुद योग्य है वही योग्य बना सकता है। तो एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, तो उसके लिए स्वयं योगी बनना पड़ेगा। योगी के क्या लक्षण है, किसे योगी कहा जाएगा, योगी की क्या परिभाषा है, क्या क्वालिटीज योगी में होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें चिंतन करना है। योगी अर्थात जिसका चित्त शांत है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो जो शांत रहता है, शत्रु के सामने भी वो शांत रहता है। उसका तो कोई शत्रु नहीं है, परंतु यदि कोई शत्रु बनकर आ जाए तो भी वो शांत रहता है। योगी अर्थात जब विरोध हो तो भी शांत। योगी अर्थात क्रिटिसिज्म, दूसरों को दोस्त बनाने वाला, दुश्मन को दोस्त बनाने वाला, रूहानी स्नेह की वर्षा कर। तो योगी अर्थात शांत चित्त, योगी अर्थात एक रस, जैसी जैसा चित्त सुबह है वैसा ही दिन भर और वैसा ही रात में, हर समय एक रस स्थिति, हर परिस्थिति में शांत। अशांति वाली परिस्थिति है, अशांत करने वाली परिस्थिति है, फिर भी शांत। विरोध है जबरदस्त, क्रिटिसिज्म है, ब्लेम है, निंदा है, अपमान है, इन सभी परिस्थितियों में शांत, वैसे हमें अपने चित्त की दशा बनाना है। तो योगी अर्थात शांत, दूसरा योगी अर्थात शक्तिशाली, पावरफुल, बलशाली, बलिष्ठ, छोटी मोटी बातों से डरेगा नहीं, निर्भय, न्यारा। पहला तो शक्तिशाली, और शक्तिशाली होने के वजह से कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं करेगी, कोई भी परिस्थिति की वजह से वो उदास नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। ज्ञान में योगी की एक तो सबसे सर्वोच्च परिभाषा है विवेक। योगी अर्थात जिसमें विवेक है, जिसमें सत्यता है, जिसमें ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञान उसे अचल अडोल रखता है। तो योगी की परिभाषा है ज्ञानमय स्थिति। योगी अर्थात शक्तिशाली, योगी अर्थात जिसकी कर्मेंद्रिया शीतल हो गई, योगी अर्थात संयमी, वो सब कुछ संयम के कैटेगरी में आता है। योगी अर्थात वो भोगी नहीं होगा, योगी अर्थात जो जिसकी एक एक कर्मेंद्रिया उसके वश में है, रिस्ट्रेंड, संयम, आत्म संयम उसका आभूषण है हर चीज में। एक है भोगी, एक है त्यागी, एक है योगी। एक है भोगी जो भोगते हैं, दूसरे है हट योगी जिनको त्यागी कहेंगे हम, जो कि त्याग करते हैं। जैसे एक है जिसने भोजन, भोजन को एक भोग रहा है वो भोगी, दूसरा जो है वो भोजन का त्याग कर दिया। लोगों की दृष्टि में वो बहुत बड़ा समझा जाता है जिसने त्याग दिया, पर योगी जो है वो भोजन का ना तो त्याग करता है ना तो भोग करता है, वो रस का त्याग करता है, स्वाद का त्याग करता है। हठ योगी जो होता है, एक है तपस्वी, गीता में छठवें अध्याय में योगी की, योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा हुआ है, तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी को कहा गया है। यहाँ तपस्वी का अर्थ हठ योगी है, क्योंकि तपस्या जो है वो प्रकट है, योग जो है वो अप्रकट है। लोग तपस्वी को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो दिखता है, योगी आराम चेयर पर बैठा है आराम से, उसको कोई, उसके कोई भक्त या वहां भीड़ नहीं जमती है, भीड़ बाहर जमती है। जब निर्वस्त्र होके कोई तपस्या करता है, बैठता है, राग दीख लगाता है, वहां पर भक्त इकट्ठा होते हैं। परंतु योगी अर्थात ये तो मन की स्थिति है, वो आंतरिक रूपांतर योग है। केवल तपस्या योगी नहीं है, तपस्वी योगी नहीं है, परंतु हाँ योगी तपस्वी जरूर होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि तपस्वी योगी होगा। वैसे ही त्यागी जो होता है हर चीज का त्याग करता है। भोगी का शीर्षासन जो है वो है त्यागी। परंतु यहाँ बात है योगी बनने की। योगी की सारी ही क्रियाएं मानसिक है। योगी जो कार्य कर रहा है अंतर साधना कर रहा है, अंतर रूपांतरण, आंतरिक चेतना को जागृत कर रहा है। सब कुछ गुप्त है, अप्रगट है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है योगी। और क्या निशानी है योगी की? मन बुद्धि संसार से परे रहेगी। इस संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में उसकी बुद्धि नहीं रहेगी। संसार में योगी संसार में है परंतु संसार में नहीं है। योगी इस संसार में कहीं पर भी नहीं बंधेगा, उसे कुछ भी, कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। कोई संबंध का, कोई भी रिलेशनशिप का बंधन उसे स्वीकार नहीं है। कोई ऐसा संबंध वह क्रिएट नहीं करेगा कि जिसमें वो बंध जाए। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप, ऐसा कोई भी कॉन्टेक्ट, ऐसा कोई भी संपर्क, ऐसा कोई भी संबंध वो स्थापित नहीं करेगा कि जिसमें उसके संकल्प चले। योगी अर्थात जो उपराम रहता है, वो इस संसार से परे रहता है। इस संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, बातें, वैभव, संसार के पदार्थ, कोई स्थान, कुछ भी उसे आकर्षित नहीं करते। आकर्षित कर रहे अर्थात उसमें इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। योगी अर्थात उपराम, जो उपराम है, संयमी है, उसको वो रह रहा है यहाँ पर, परंतु यहाँ नहीं है, संसार में है परंतु संसार का नहीं है। सब कुछ करते हुए जैसे निर्लिप्त है, सब कुछ करते हुए जैसे स्थिति कमल के समान है, पानी उसे स्पर्श नहीं करता, कीचड़ उसे स्पर्श नहीं करता, संसार की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, तृप्त, कोई भी चीज उसे स्पर्श नहीं करती, अस्पर्श की अवस्था अर्थात योगी। तो हे अर्जुन, ऐसा योगी भव। तो योगी की सबसे बड़े गुण जो योगी के अगर देखा जाए, तो सबसे पहला जो है वो तो ज्ञान या विवेक, दूसरा उसमें वैराग होगा, बिना वैराग के योगी नहीं बना जा सकता। जिसे बाबा बेहद का वैराग कहते हैं। कल भी कहा था ना, ब्रह्मा के लिए यह भाग्यशाली रथ है, इसका रथ बाप ने लिया हुआ, यह है बेहद का संन्यास। तो बेहद का वैरागी, बेहद का सन्यासी, सन्यास विकारों का सन्यास, देह की आसक्तियों का सन्यास, देह वाहन का सन्यास। तो वो संसार में है परंतु यहां नहीं है, ऐसी अवस्था जो है वो योगी की अवस्था है। यहां संसार की कोई भी चीज, कोई भी प्रशंसा, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनअफेक्टेड, यहां का किया हुआ अपमान, यहां की बातें, यहाँ का शोर शराबा, कोई भी उसे प्रभावित नहीं करता। तो योगी अर्थात वैरागी, सबसे वैराग, अनासक्त वृत्ति अर्थात योगी, अंदर से वो अनासक्ति बहुत पक्की हो। नहीं तो इस ब्राह्मण जीवन में भी इतनी सारी, इतने सारे प्रलोभन हैं, इतने सारे सुख सुविधाएं और साधन सामग्री, इतने सारे फैसिलिटीज, इसमें तो लिप्त हो जाएगा कोई भी। कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक साधनों का प्रयोग करता रहता है तो स्वतः ही उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, स्वतः ही। साधनाएं जो की जाती है वो साधनों के अभाव में जो साधनाएं होती है सर्वश्रेष्ठ साधना होती है, और अगर साधन है तो साधनों के होते हुए भी ऐसे कि जैसे वो नहीं है, ये जो साधना है सर्वश्रेष्ठ साधना है। साधन है परंतु हम उस पर निर्भर नहीं, योगी अर्थात स्वनिर्भर, सेल्फ सफिशियंट, सेल्फ रिलायंट, किसी पर भी किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं है। अगर मिल रहा है तो ठीक, कल नहीं मिलेगा तो भी ठीक, आज कोई है सपोर्ट करने वाला कल नहीं होगा तो भी ठीक, किसी पर भी आश्रित नहीं है योगी, किसी पर भी आश्रित नहीं है, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं कि ये मुझे देखे, ये मेरी केयर करे, ये मुझे प्यार दे, ये मुझे सम्मान दे, मैं कुछ बोलू तो मेरी प्रशंसा हो। निष्काम योगी, रॉयल बेगर्स नहीं बनना है, रॉयल भिखारी पर नहीं, ये मान दे तो मैं मान दू, कल की मुरली का वरदान की दूसरी लाइन, ये मान दे तो मैं मान दू, ये है रॉयल भिखारी बन। इसके लिए हे अर्जुन, निष्काम योगी भव, एल्ट्रुइस्टिक योगी, तो एक्सपेक्टेशन से मुक्त है। जहां जहां एक्सपेक्टेशन रहेगी सूक्ष्म में, मनसा में, सबकॉन्शियस में कि ये मेरे तरफ, मेरे लिए ये करे, वहां वहां दुख की प्रतीति प्राप्ति होगी। योगी अर्थात जिसको दुख स्पर्श ना करे। अब दुख के सारे कारणों को बंद करना पड़ेगा अगर दुख से मुक्त होना है तो, नहीं तो दिन भर में जिस जिस से एक्सपेक्टेशन रखोगे उस आत्मा से दुख की अनुभूति होगी। जिस जिस से सोचोगे कि ये मेरे लिए ये करे, ये मुझे देखने आए, ये मेरी केयर करे, प्यार करे, मुझे कुछ दे, मैंने इसके लिए ये दिया, ये भी मुझे कुछ दे, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं दुख को जन्म देगी। तो योगी अर्थात नो एक्सपेक्टेशंस। मरने की अवस्था इस संसार में है परंतु जैसे कि वो है नहीं इधर, ऐसी उपराम स्थिति। ये उपराम शब्द तो बहुत ऊंचा है, साक्षी उपराम, ऊंचे शब्द है सारे। फिर योगी अर्थात
न्यारा, प्यारा,
न्यारा, जो न्यारा है, प्यारा नहीं कहेंगे हम, प्यारा स्वतः ही हो जाएगा। प्यारा निष्पत्ति है, प्यारा रिजल्ट है, प्यारा परिणाम है उसका। लंबे समय के न्यारापन ही अंततोगत्वा प्यारा बनाएगा। प्यारा होने का कोई पुरुषार्थ कभी नहीं है, सारा ही पुरुषार्थ न्यारा होने का है। न्यारापन, डिटैच्ड, पृथक, अलग, वो पुरुषार्थ है। योगी अर्थात वो ज्ञान में आ गया, ज्ञान का नेत्र, वो तो ज्ञानी के सिवा योगी बन ही नहीं सकता है। योग की सबसे फर्स्ट स्टेप है ज्ञान चाहिए उसके पास, स्वयं जागृत, स्वतः जागृत, उसके पास ज्ञान। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जो जो अविद्या है, जो जो असार है, जो जो असत्य है, जो जो असार है, उसका त्याग और परित्याग ही योगी को, योगी की तो वो प्री रिक्विजिट, उसके सिवा योगी बना ही नहीं जा सकता। ज्ञान सबसे पहली चीज है योगी के लिए, बिना ज्ञान के कोई भी योगी कहीं पर भी स्वप्न में भी नहीं बन सकता है, क्योंकि अज्ञान अंधकार की स्थिति है, दुख की स्थिति है। अंधकार में कभी जब तक प्रकाश नहीं आएगा वहां पर एक ज्ञानी ही संकल्प कर सकता है कि मुझे योगी बनना है। संसार का व्यक्ति तो भोग में डूबे हुए, विलासिता के संसार में डूबे हुए, उस विलासिता के संसार से निकल ही नहीं सकते क्योंकि वो आदत बन गई है, उससे निकलना मुश्किल है। तो योगी की जो अवस्था है वो सर्वोपरि है। इसके लिए गीता में उसी श्लोक में कहा है कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपस्वी यहां जो तप करते हैं उनसे योगी श्रेष्ठ है, योग लगाने वाले। योगी अर्थात भीड़ में एकांत का अनुभव करता है, रहा है, संगठन में है। ऐसा नहीं कि संगठन से भाग जाना तो पलायनवाद है, उससे कोई योगी नहीं बनता है। यहां से भागकर कमरे में बैठकर छुट्टी लेकर उसमें खतरा है, क्या होता। एक है जो ड्यूटी मिली है ना, अगर हम ये सोचे कि चलो अभी एक महीने की छुट्टी ले लेता हूं और केवल तपस्या करता हूं, उसमें एक खतरा बहुत है, जबरदस्त एक खतरा है उसमें। जो अभी आप सेवा कर रहे हो उसमें दुआएं तो मिल रही है, संतुष्टता भी है कि ये कर रहे हो, परंतु जब छुट्टी ले रहे हो तो आप अगर जो साधना कर रहे हो अगर वो साधना ठीक से नहीं की तो वो भी बोझ है फिर, क्योंकि इधर कुछ तो मिल रहा था, इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको छोड़कर संकल्प किया कि अभी तपस्या करता हूं। कर्म योग, कर्म को छोड़कर, सेवा को छोड़कर अभी कुछ समय तपस्या करता हूं, तो ये जो कर रहे हो ना, ये करते करते ही करना हमेशा, दो ऑप्शन है, ये करते करते करना हमेशा श्रेयस्कर है, वो छोड़ के करना अर्थात तो इसमें दुआएं नहीं मिलेगी, और इसमें अगर किया नहीं वो तो फिर और गड़बड़े। इसके लिए गृहस्थी और सन्यासी के लिए यही तो कहा जाता है कि कोई लोग सन्यासी होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वहां पे। इसके लिए गृहस्थ में रह के जो सन्यास्त हो जाता है, गृहस्थ में रहते ही वो बहुत ऊंची अवस्था है। वो ऐसे कई सारे गृहस्थी हुए हैं कि जो इतने अनासक्त, इतने अनासक्त जैसे संसार उसके लिए है ही नहीं, ना तो पत्नी से ना तो बच्चों से, वो जो विवाह कर लिया और अभी इतने अनासक्त, इतने वैरागी। एक ऐसा ही परिवार था जिसको एक सन्यासी उनके घर में आता था, उनके गुरु, उसके गुरु ने कहा तुम सन्यास क्यों नहीं ले लेते, बोलते किसका सन्यास करूं पहले ही अनासक्त है, अभी और क्या रह गया। ये इच्छा ही नहीं है कि सन्यास करूं, ये भी एक इच्छा है, इच्छा की कैटेगरी में आता है वो, इतनी अनासक्त वृत्ति है। तो योगी अर्थात वैरागी, योगी अर्थात निरंतर, टाइम बाउंड नहीं, अमृत वेले योगी नहीं, निरंतर योग। तो बड़ी ऊंची अवस्था है कि जिसमें निरंतर ही योगी है, निरंतर मन में अनासक्त वृत्ति है, वीतराग की अवस्था है, राग नहीं है कहीं पर भी। राग का अभाव अर्थात वैराग, वीराग अर्थात जहां राग नहीं, वैराग की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। जैसे प्रकाश अर्थात क्या, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसा ही इधर भी है। जहां राग नहीं वो विराग, जहां राग नहीं वो वैराग की अवस्था है। फिर योगी अर्थात संतुष्टता, संतुष्ट सततम योगी। कैसी भी परिस्थिति है, आज सब कुछ है कल कुछ नहीं होगा तो भी प्रसन्न, तो भी संतुष्ट। कोई भी चीज उसे असंतुष्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभाव, कोई भी चीज का शॉर्टेज उसको असंतुष्ट नहीं कर सकता। संपूर्ण संतुष्टता जिसे बाबा संतुष्ट मणि कहते हैं, वो मणि की तरह है, संतुष्टता मणि है वो, तो कोई भी चीज उसको असंतुष्ट ना करे, वो है योगी की परिभाषा। और कोई भी परिस्थिति नहीं उसको हिलाएगी, क्योंकि उसका अपना जो सुख है वो आंतरिक है, वो अपने ही आत्मानंद में है, आत्मानंद में स्थित है। बाहर की चीजें उसके आनंद का कारण नहीं है, बाहर की कोई परिस्थिति उसके सुख का कारण नहीं है, बाहर का ये वातावरण जो है, एटमॉस्फियर, क्लाइमेट, ठंडी है, गर्मी है, कुछ भी है, उसकी साधना वैसे ही चालू रहेगी। ऐसा नहीं कि बारिश है तो साधनाएं कम हो जाए, या ठंड है तो साधनाएं कम हो जाए, गर्मी है तो साधनाएं कम हो जाए। गर्मी है उनके कमरे में एसी है और अच्छा है थोड़ा हवा, इसके लिए उनका योग अच्छा लगता है, मेरे पास नहीं है, मेरा योग कम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी साधन के अधीन नहीं है, वशीभूत नहीं है, साधन पर निर्भर नहीं है। साधनों का उपयोग तो कर रहा है तो उपयोग कर रहा है, कल नहीं होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो धन्यवाद, बहुत बढ़िया, नहीं है डबल थैंक्स।
तो यूं कहे ना, कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती।
अप्रभावित, अप्रभाव, अस्पर्श की अवस्था अर्थात योगी। तो ये भूलना नहीं है कि हम यहाँ योगी बनने आए, इस जीवन का लक्ष्य है योगी बनना। योगी भव पवित्र भव, ये स्लोगन है, ये वरदान है, ये ब्लेसिंग है, ये पहला स्लोगन है, ये पहला वरदान है, बाबा ने कई बार कहा है। योगी तो मेरे समान है, मेरी ही छवि है वो, मेरा ही प्रतिरूप है वो, मेरा ही प्रतिबिंब है वो योगी। ज्ञानी तो मुझे अति प्रिय है, परंतु योगी मैं खुद हूं। योगी अर्थात और कर्म कौशल, योग कर्मसु कौशलम। योगी अर्थात कर्म का परित्याग करने वाला नहीं, कर्म कर रहा है परंतु वो कर्म करते हुए भी उसमें भी कौशल्य है, उसमें भी संपूर्ण लगन से, निष्ठा से वो कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं उसमें लापरवाह है, बेपरवाह है, उसमें गफलत कर रहा है, वो योगी नहीं है। आलस्य अलबेलापन वाला योगी तो अर्थात सदा अलर्ट, सदा अलर्टनेस की स्थिति में सारे कर्म जो किए जाते हैं वो योगी के कर्म है। और ऐसे जो कर्म है वो निष्काम कर्म होंगे, निस्वार्थ कर्म होंगे, ऐसे ही कर्म जो श्रेष्ठ होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे, ऐसे ही कर्म जो स्वयं को और दूसरों को सुखी करने वाले होंगे। और वो कर्म सर्व सबसे महत्वपूर्ण है, अनासक्त कर्म होंगे वो, ये सबसे बड़ी उसमें चीज है। अनासक्त, अगर चाहे कितना भी कोई अच्छा कर्म है और करते करते अगर कोई आसक्त हो जाता है उसमें तो वो बंधन बन जाएगा। कोई किसकी सेवा कर रहा है परंतु उसको ये संकल्प चल रहा है कि मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, कितनी ये बढ़िया सेवा है, और फिर दूसरे भी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, और उसमें फंस गया कोई। हाँ, स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, दवी परिवार की प्रवृत्ति, हद की प्रवृत्ति, चारों ही प्रवृत्ति से जो परे है, नष्ट मोह है, प्रवृत्ति में रहता है परंतु मैं उसमें समाप्त हो गया है। सेवा की प्रवृत्ति, संसार, ये जो भी प्रवृत्ति है उन सब से जो परे है वह है योगी। तो योगी निष्काम, योगी निस्वार्थ, ये योगी की परिभाषा है। और रियलिटी रॉयल्टी, और सर्व हितकारी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और योगी के हृदय में किसी के प्रति भी बदले की भावना नहीं है, प्रतिकार की भावना नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं है, किसी से भी बदला नहीं लेना चाहता। उसने मेरे साथ ये किया, अभी मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। सर्व हितकारी योगी का हृदय अर्थात एक झरना है शुभ भावनाओं का। किसी से किसी का भी अमंगल अहित नहीं कर सकता है, किसी का भी अमंगल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी दुराचारी, पापी, सताने वाली, ग्लानी करने वाली, निंदा करने वाली, इस प्रकार की सितमगर, ऐसी कोई भी आत्मा हो, किसी के प्रति भी उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या, बदला, प्रतिकार, प्रतिशोध, रिवेंज, ये भावनाएं नहीं होगी। अगर आ रही है तो उसे वो रूपांतरण करेगा। योगी अर्थात और वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी। ये विश्व मेरा परिवार है, यहाँ की हर आत्मा मेरी है, हर आत्मा मेरी है। ये तभी होगा जो सबसे नष्ट मोह होगा इस संसार से। जब पहले स्टेप उसकी है कि संसार से, शब्द खराब है पर नफरत, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसी आत्मा आगे चलकर विश्व कल्याणकारी बनेगी। जिसको आसक्ति है किसी में वो विश्व कल्याणकारी बन ही नहीं सकती। जैसे एक टीचर है, स्कूल टीचर, वो बच्चों को पढ़ाती है क्लास में, और उस सभी बच्चों से प्यार है उसका, पर कोई फेल होता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है। वो कहती है आका चलो भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, इसके बावजूद भी कोई फेल हो गया तो उसको अनासक्त रहती, पर घर में उसका ही बच्चा जब फेल हो जाता है, नापास होता है, तो उसको तब वहां दुख होता है क्योंकि वहां आसक्ति है। स्कूल में विद्यार्थी होते हैं वहां उस प्रकार का दुख नहीं होता, जब उसका खुद का बेटा फेल हो जाता है तब उसको जो दुख होता है वो दुख कुछ अनोखा होता है, अलग अजीब प्रकार का विलक्षण विचित्र दुख होता है। खुद के बच्चों के लिए
ऑपरेशन करता है
हाँ नहीं, डॉक्टर्स यूजुअली अपने बच्चों का ऑपरेशन खुद नहीं करते, दूसरों से कराते। अपनी पत्नी का, अपने पति का या अपने बच्चों का जब ऑपरेशन करने की बारी आती है तो खुद नहीं करते, खड़े रहते हैं परंतु दूसरों से कराते हैं। ऐसे बहुत वीर शूरवीर है कि जिनके हाथ में वो नाइफ हो और वो काटे, हिम्मत नहीं होती है अपने बेटे को काटने के लिए। अगर माँ होगी तो वो किसी वहां खड़ी रहेगी, भले वो सर्जन है परंतु वो नहीं करेगी, बहुत कम है जो करते हैं, क्योंकि मोह है ना, मोह दुख नहीं देने देता जिससे हमें मोह है। जो खुद करेंगे वो योगी है। योगी तो नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है। हमें मेडिकल रीति से भी पता है कि ये जाने वाली आत्मा है, हम जो कर रहे हैं वो तो जाना ही है, उसको जो भी कर रहे हैं वो केवल उस आत्मा के कल्याण के लिए या अनासक्त भाव से, क्योंकि कर्तव्य है इसके लिए करना है, इसके लिए कर रहे हैं। हमको ये पता है ये जाने वाली है, ये छोड़ने वाली है, एक तो उसका सम्मान रखने के लिए उस आत्मा का, दूसरा हमारा अपना कर्तव्य है, तीसरा वो जो परिजन है उसके रिलेटिव्स उनके लिए वो करना है। पर लक्ष्य है कि हर आत्मा इस तन से बहुत ही शांति से निकल जाए, बहुत पीड़ा उसको ना हो, बहुत दर्द उसको ना हो। अच्छा, योगी की और एक परिभाषा है, योगी वो जो स्वयं को दुख ना दे। एक है दूसरों को दुख ना देना, हिंदी इंग्लिश में एक शब्द है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट अर्थात वो जो दूसरों को दुख देते हैं। एक है सैडिस्ट, नहीं मैसोचिस्ट अर्थात स्वयं को दुख देने वाले। एक है सैडिस्ट, सैडिस्टिक प्लेजर्स मतलब दूसरों को सताकर, दूसरों को सताकर जो सुख की अनुभूति होती है उनको कहा जाता है सैडिस्ट। दूसरे होते हैं मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट अर्थात वो मैसोचिज्म जिसको कहते हैं, वो अर्थात स्वयं को दुख देना। जब तक, जैसे मैसोच नाम का एक व्यक्ति हुआ था विदेश में जो बहुत बड़ा लेखक था, वो जब तक स्वयं को कोड़े नहीं मारता था उसको नींद नहीं आती थी, जब तक अपने खटिया पर वो बहुत सारे काठे नहीं बिछा देता था उसको नींद नहीं आती थी, जब तक वो अपने भोजन में नीम नहीं मिला देता था उसको वो भोजन रुचिकर नहीं लगता था। मतलब उसके सारे ही प्रयत्न जो थे खुद को, आप कहेंगे ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या? होते हैं। मैसोचिज्म ये टर्म है एक साइकेट्री में इंग्लिश में, मैसोचिज्म अर्थात स्वयं स्वयं को दुख देना। अभी यहाँ योगी संसार के लोग किस प्रकार का मैसोचिज्म करते, यहाँ संसार के लोग है लंबे लंबे उपवास करना, उससे थोड़ी सी लोगों का मान भी मिलता है ना, वो भी एक रीति से मैसोचिज्म ही। हाँ वो सारा ही मतलब जो भी इस तरह का जो भी करते हैं स्वयं स्वयं को दुख देना। अच्छा, दूसरा इसी में और बहुत सारी गहराई में अगर जाए इसके तो पता चलेगा कि हम भी जैसे दुख की तो तलाश में है, दुख का आयोजन करते हैं, ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करते जिससे हम दुखी हो। कैसे? 10 लोग हमारी स्तुति करते हैं, हमें अब इतना उससे ये नहीं होता, एक किसी ने कुछ बोल दिया कि बस उसको ऐसा, जैसे हम तैयार थे उसको लेने के लिए, लिया ऐसा झपट लिया उस दुख को कि बस इसने मुझे ये कहा और दुखी हो गए। तो योगी अर्थात जिसका सेंसिटिव नेचर नहीं है, सेंसिटिव नेचर वाली आत्माएं इस ज्ञान योग के मार्ग में चलना बहुत मुश्किल है, कठोर बनना पड़ेगा, उल्टा घड़ा, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कोई कुछ गलत व्यवहार कर रहा है करने दो। यहाँ तो अगर सेंसिटिव हो गए तो योगी से वो क्राइटेरिया ही में नहीं बैठता, योगी अर्थात इनसेंसिटिव रहता है एक रीति से। योगी अर्थात वो परिभाषा ही उसकी है, वो आप उस वो लाइन में ही नहीं है अगर आप बहुत सेंसिटिव है तो। एक तो वैराग तो चाहिए ही चाहिए, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, और ये तीसरी बात, कोई भी चीज से सेंसिटिव नहीं। अगर किसी के बोल और किसी के व्यवहार से अगर सेंसिटिव हो जाए तो आगे कैसे बढ़ोगे, बढ़ ही नहीं सकते। यहां तो खतरे वाला मार्ग है, ये कांटों का रास्ता है, कोई कुछ न बोले ये हो ही नहीं सकता है। सुबह से अमृत वेले से लेके अमृत वेला अगर छोड़ दिया, उसके बाद में पौने पांच से लेके, तो अच्छा चलो मुरली भी छोड़, पौने पांच से लेके तो रात को 10 बजे तक कोई कुछ ना बोले ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कुछ तो बोलेगा ही आके, भले बैठे हैं बोलेंगे ऐसे पैर मत करो उधर पैर करो, कुछ ना बोल बोलना ही है। मुरली में बैठे हैं हम, यहाँ बैठे हैं वो, यहाँ आके बैठा कोई, हम ऐसा पैर करके कहेंगे उधर पैर करो। कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, शांति से नहीं बैठेंगे। ये कांटों का जंगल है, दिन भर में कोई कांटा न चुभाए ये हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई कांटा न चुभाए। ड्यूटी करने जाए पहला ही प्रश्न, लेट क्यों आए? कुछ ना कुछ तो बोलना ही है किसी को। कोई काम दिया, ये काम तुमसे होता नहीं, ये काम तुम ठीक नहीं करते, ये तुमको आता नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। उसको बोलने में सुख है, वही सुख का कारण है, उसी से अहंकार की तृप्ति होती है आत्माओं की। कटु वचन बोलकर कल कहा ना, कोई पत्थर फेंके तो तुम रत्न दो, क्योंकि तुम ज्वेल मर्चेंट, बाप है रत्नाकर, ज्वेल मर्चेंट कहते हैं उसको, वो ज्वेल मर्चेंट है, वो रत्नाकर है, तुम उसके बच्चे, उसके फर्जंद, उसकी संतान हो। तो कोई रत्न फेंके तो तुम कोई क्या करो, रत्न फेंके तो कोई एक रत्न फेंके तो हम 10 रत्न फेंके, कोई एक पत्थर फेंके तो रत्न फेंको। रूहानी स्नेह की वर्षा करके दुश्मन को भी दोस्त बना। योगी अर्थात और योगी की क्या परिभाषा है? योग्य हो और पहले मैं, प्रथम मैं, मुझे कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, जब मधुबन में सबसे पहला कुआं बना, सबसे फर्स्ट, पता नहीं वो कहां बना था, पर कुआं जब खोदा गया और उसमें पानी आया तो बाबा ने कहा कि ये पानी लेके आओ, पहले बाबा पिएगा, अगर उसमें कुछ जहर या कुछ भी होगा गड़बड़ तो वो बाबा पर शरीर पर असर होगा, बाद में बच्चे पिएंगे। कहाँ खोदा गया मुझे पता नहीं, पर एक किसी माता का अनुभव है, तो उसने ये लिखा है कि मधुबन में सबसे पहला कुआं, तो वो जो पानी लेके आए तो कहा इधर लेके आओ, पहले इधर, कुछ भी हो गया गड़बड़, क्योंकि पता नहीं अभी कौन सा पानी आया। तो ये योगी के लक्षण है सारे, पहले स्वयं ले लेगा वो, जैसे शंकर जी ने वो पी लिया ना, हाँ विष नीलकंठ कहलाया, वहां पर वो विष्णु ने रोक दिया ना उसको, तो भगवान अगर विष्णु, अगर वहां पर विष्णु को भगवान अगर कोई पीता भी है तो उसे जिम्मेवारी उसके ऊपर है, फिर यहीं पर रख दिया उसका, तो दूसरा नाम मिल गया फिर उसको, नीलकंठ। तो हम भी अगर पिए तो वो हमें मरने नहीं देगा, पीकर विष सभी के दिल का, क्या गीत है, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सजाया सवारा, तो वो है योगी। बस वो जाने नहीं देते, कुछ भी अंदर नहीं जाने देते। अच्छा अगर अगर दादी के विरोध, अगर कुछ जबरदस्ती उनको कहा ना, तो दादी बहुत अच्छी एक बात करती, अरे मीठी बहन रुक जा, अगर दादी चलो चलो चलो, अरे एक होता इरिटेट होके बोलना, जैसे कल बोला था ना, अगर कोई माने न माने, मान दे या न दे, क्या कहो मीठे भाई मीठी बहन, तो ये दादी का हमने देखा, अरे मीठी बहन रुक जा, ऐसे कहती है दादी चलो चलो चलो, अरे रुको। तो रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति और रूहानी सम्मान देने वाली, कल का वर्तन। तो योगी अर्थात ये सारी चीजें, और भी कुछ है योगी अर्थात? बहुत है योगी, योगी की बड़ी परिभाषा है, योगी में किसी के प्रति निगेटिव भावना नहीं। स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सर्दी गर्मी सब में समान अप्रभावित, कोई असर ही नहीं है उसके ऊपर, ऐसी अवस्था है योगी की। तो सबसे पावरफुल क्वालिटीज कौन सी है जितनी हमने निकाली? सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसमें कूट कूट कर वैराग भरा होना चाहिए, त्याग तपस्या ये भी योगी के सारे है। फिर है इनसेंसिटिव, सेंसिटिव नेचर बिल्कुल नहीं, ये अगर देखा जाए अगर एक कहा जाए ना तो ये एक ही चीज है। फिर सेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव नेचर नहीं होना चाहिए योगी का। सेंसिटिव नेचर है मतलब योगी की कैटेगरी में ही नहीं है, वहां से आउट, वो लाइंस में ही आउट है, बाकी उसमें सब कुछ है, विश्व कल्याण की भावना है, सेवा है, सब कुछ है, पर अगर सेंसिटिव नेचर बहुत ज्यादा है वो योगी की कैटेगरी में नहीं है। हाँ वो बहुत डर लगता है ऐसी आत्मा को कुछ भी बोलना। तो बाबा कह रहे हैं दो काम दिए, एक आत्माओं को योगी बनाना और आत्माओं को योग्य बनाना, उसके लिए स्वयं योगी बनना पड़ेगा और स्वयं योग्य बनना पड़ेगा, तो धरनी तैयार होगी, फिर वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति जैसी है वैसे ही वायुमंडल, और वायुमंडल फिर तत्वों को प्रभावित करेगा, प्रकृति को प्रभावित करेगा। अरे आज ये था मैं भूल गया, नहीं नहीं आज आज याद ही नहीं है हमारे पास 5-10 मिनट।
ओम शांति। बाबा ने जो 23 तारीख की मुरली जो हम लोग के लिए चलाए थे तो उसमें रिपीट के लिए हम सबको नंबर वाइज नंबर मिल ही रहा है, तो बाबा ने एक ऐसे क्वेश्चन किया कि बाबा कौन से बच्चों से मिलते हैं? है रूहानी बच्चों से तो मिलते हैं, और कोई
कल पहले वाले
वो भी ठीक नहीं हुई सब थोड़ा वो ठीक हो गया, लग जाने वाला आ गया है, हाँ उसके आसपास ये भी नहीं पकड़ में आया, हाँ जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं उन्हीं बच्चों से बाबा मिलते हैं, उससे कम बालों से बाबा मिलते हैं तो भी उसमें उनको लगता नहीं और करेंगे भी नहीं। तो दूसरी बात है बाबा ने बोला कि सन्यासी को संपूर्ण निर्विकारी क्यों नहीं कहेंगे? और देवी देवता को संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं तो इसलिए जो सन्यासी को संपूर्ण निर्विकारी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसका शरीर और आत्मा, आत्मा वाले पावन हो भी जाए शरीर पावन नहीं, तो उसमें बाबा ने दिल्ली को याद किया था तो दिल्ली के बारे में क्या है? 3 बातें बाबा ने बताया, हाँ एक तो हो गया ठीक है, अरे 2 बाकी अच्छा उसमें बाबा ने 2 बातें और रखी, जमुना का कंठा होगा और लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी, तो बाबा सम्मुख मिलते हैं, बाबा सम्मुख कब मिलते हैं? अच्छा नहीं 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 हुआ पकड़ में नहीं आई अभी, हाँ जी हाँ जब जिस्म मिलता है बाबा को तभी बच्चों से सम्मुख मिलते हैं बाबा, तो जो बाबा ने दूसरी भी बातें बताई बाबा जब कब आते
संगम पर?
संगम पर आते हैं जो विनाश होना होता है, और विनाश भी बीच में आते हैं, जो बीच में आकर आकर के बाबा बच्चों से मिलते हैं। तो बाबा ने जो रथ के बारे में बताया, जो भागीरथ, तो भागीरथ के बारे में क्या दो चार बातें है उसमें, पांच छह बातें कंटिन्यू है उसमें। भाग्यशाली रथ वो मुकर है, क्योंकि रथ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है, और भागंती भी हो सकते इसके तो इसमें तो मुकर है। उसके बाद में बाबा ने बोला कि पर्थनट तो उनसे होते हैं, हाँ फिर बनते हैं, इसी शरीर से बाबा से मिलते हैं, इसी शरीर से तुम पावन बनते हो। ये बहुत सारी है, उसमें पांच से दस बातें ही होंगी। तो उसमें बाबा ने फिर पीछे बोला कि जो हम सब जो आत्माएं आज जो कलयुग का जो आयु बताया, उसमें बाबा ने क्लियर किया था कि कैसे हो सकता है 5000 साल से ज्यादा, बाकी ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं। तो उसमें प्रेरणा की बातों में बाबा खुद बिगड़ गए थे क्योंकि मुश्किल से 5000 साल के बाद मुझे जी सब मिलता है बच्चों से मिलने के लिए, प्रेरणा तो एक विचार है बोल के बाबा ने बिगड़ गए थे।
प्रेरणा से ना तो मैं कार्य करता हूँ ना तो प्रेरणा से मैं आता।
तो एक बात इसमें बाबा ने बोला कि किसी को ज्ञान सुनाते हो तो आप पहले क्या करो, किस बात से शुरू करो आप? पहले स्थापना की बात है, रंग पेंट हो जाएगा और फिर उनको संदेश गलत जाएगा, इसलिए बाबा ने बोला पहले स्थापना की बातें सुना के, फिर स्थापना होगा तो पुराना तो अपने आप से खत्म होगा ही तो इस तरीके से। और उसमें एक बात बाबा ने बोला, स्लोगन क्या था कल का?
दो शब्द याद रखो तो विश्व
निर्माण,
तो कौन से दो? हाँ तो उसमें अब एक दो चार बातें और भी है, बुद्धि में कौन कौन आता है पॉइंट बाय पॉइंट।
नहीं पॉइंट की बात है, पॉइंट बाबा पॉइंट रिवाइज कर रहे थे, बुद्धि में रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ।
हाँ उद्देश्य बुद्धि में क्यों रहने चाहिए, बाबा ने बोला कि ये स्टूडेंट लाइफ है इसलिए ये बातें बुद्धि में रहनी चाहिए।
पॉइंट भूल जाती है
तो फिर बाप को याद करो,
भूल जाता है
तो फिर
टीचर को याद करो,
टीचर याद रहेगा पढ़ाई,
पढ़ाई याद
उद्देश्य याद
रहेगा, सारा कुछ याद रहेगा।
टीचर
तो वरदान में बाबा ने बहुत पीछे पता भाई साहब ने बोल ही दिया है, पूरा वरदान बताइए। थैंक यू, सब निष्काम योगी बनो। तो उसमें 84 जन्म वाले के लिए बाबा ने यहाँ भी बोला, जो 84 जन्म जो लेते हैं वो आत्माओं के लक्षण भी बताए थे बाबा ने। नहीं उस
धर्म की बात है ना वो,
अगर कोई दूसरा धर्म प्रिय है
तो भी वो नहीं आ पाएगा।
हर धर्म को, धर्म वाले को अपना धर्म अच्छा लगता है, और अगर दूसरा धर्म अच्छा लगता है फिर भी वहाँ नहीं जा सकते। त्योहार की बात है, चार
शांति है। त्योहार के बारे में बाबा ने बोला, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, किसका यादगार है त्योहार?
संगम पर हम जो मनाते हैं
उसका जो प्रैक्टिकल हम करते हैं संगम पर, उसके त्यौहार बनते हैं। तो सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा है?
शिव
जयंती। ओम शांति।
चार
जयंती,
गीता जयंती,
नारायण
जयंती,
और फिर जगदम्बा जयंती। जयंती पर हॉलीडे लेते कल।
अच्छा तो इसमें एक बात तो याद आ गई, अच्छा इसमें बाबा ने भी एक बात बोला था कि क्या बातें जो होती है उसको, वो बातें सुन करके बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ बाबा को समझ में नहीं आता है। हाँ बातें होती है और जो सर्वव्यापी कह देते बाबा को समझ और वो बातें सुनने से बाबा को समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं लोग ऐसी बात है। अच्छा जगदम्मा की जो बर्थडे क्यों नहीं मनाते
बर्थडे
हाँ तो जयंती क्यों नहीं मनाते हाँ तो 2500 साल के इधर वालों को सबको पता है तो उसके पहले वालों को किसको पता नहीं इसीलिए जगदम्मा की बर्थडे नहीं मनाई जाती।
नारायण जी
कौन सा